दिन भर तारीख 1 जुलाई दिन शुक्रवार, मैं हूं मोहनलाल शर्मा। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ और चमोली जिलों में बादल फटने और बारिश का कहर, अब तक 12 लोगों की मौत।
3 गांव हैं, बसड़ी और नाचनी और एक लोड़ करके एक गांव है, उसमें मलबा आ गया। कुछ कैजुअलिटीज की भी सूचना है, लेकिन कुछ सूचना नहीं हो पा रही क्योंकि वहां कनेक्टिविटी अभी अच्छी नहीं है।
3 दशकों के इंतजार के बाद भारतीय वायुसेना को मिला देसी लड़ाकू तेजस। चलो रियो में बताएंगे कि कैसे रोम ओलंपिक में फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह के हाथ से फिसला था पदक।
मैं 250 मीटर तक रेस को लीड कर रहा था, तो 250 मीटर जब मैं पहुंचा तो वहां पे मेरे दिल के अंदर ये ख्याल आया कि मिल्खा सिंह जी, आप इतना तेज दौड़ रहे हैं, हो सकता है कि आप ये रेस खत्म न कर पाए।
लेकिन पहले मुख्य समाचार।
बीबीसी समाचार सुशीला सिंह से। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ और चमोली जिलों में भारी बारिश के बाद बादल फटने और भूस्खलन में 12 लोगों की मौत हो गई है और 17 लोग लापता बताए गए हैं। आशंका है कि ये लोग मलबे में दबे हो सकते हैं या तेज पानी के बहाव में बह गए हो सकते हैं। प्रभावित इलाकों में सेना को बुला लिया गया है। NDRF के जवान भी बचाव और राहत काम में जुट गए हैं। इन इलाकों में खेती को भी नुकसान पहुंचा है। लोगों के खेत और पशु बह गए हैं और मकान मलबे में दब गए हैं। बांग्लादेश में एक हिंदू पुजारी की गला रेत कर हत्या कर दी गई है। एक अधिकारी के अनुसार श्यामानंद दास सुबह की पूजा की तैयारी कर रहे थे, तभी 3 लोग मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए और उन पर हमला किया। पुलिस के अनुसार हमलावरों ने गंडासे से गले पर कई बार वार किया। हत्या करने के बाद वे भाग गए। हालांकि कत्ल की वजह साफ नहीं हुई है, लेकिन स्थानीय पुलिस स्टेशन प्रमुख हसन हाफिजुर रहमान ने समाचार एजेंसी AFP को बताया कि कत्ल करने का तरीका वही है जो स्थानीय इस्लामी चरमपंथी इस्तेमाल करते हैं। एक प्रत्यक्षदर्शी राजकुमार का कहना था, जब हमारे पुजारी फूल लेने के लिए बाहर निकले, 3 लोग मोटरसाइकिल पर आए। वे लोग इन्हें कुछ दूरी तक घसीट कर ले गए, फिर उन्हें उनके सिर कंधे पर बड़े चाकू से हमला किया। वे जमीन पर गिर गए। स्थानीय लोगों ने इन हमलावरों का पीछा किया, लेकिन वे भागने में कामयाब रहे। ये थे प्रत्यक्षदर्शी के शब्द। फ्रांस में सोम की लड़ाई की शुरुआत की 100वीं बरसी पर हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा हुए और इस लड़ाई में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। इस समारोह में फ्रांस के राष्ट्रपति और ब्रिटेन के शाही परिवार ने भी हिस्सा लिया। थिपवेल मेमोरियल में हुए इस समारोह में प्रथम विश्व युद्ध के 100 वर्ष पूरे होने पर चल रहे समारोह का एक ये भी हिस्सा है। 5 महीने चले सोम के युद्ध में लाखों लोग मारे गए थे। इस बीच ब्रिटेन में उस वक्त 2 मिनट का मौन रखा गया जब जर्मनी की सेना पर हमला बोला गया। केवल एक पहले दिन की ब्रिटिश फौज के 20,000 सैनिक इसमें मारे गए थे। ताइवान की सेना ने गलती से एक मिसाइल छोड़ दी, जिससे एक व्यक्ति की मौत हो गई और 3 लोग जख्मी हो गए। ताइवान सेंट्रल न्यूज़ एजेंसी CNA के मुताबिक काउंगसियोंग में एक नौका ड्रिल के दौरान गश्त पर थी, जब स्यूंग फेंग तृतीय नामक एंटी शिप मिसाइल छूट गई। मिसाइल चीन की धरती की दिशा में छूटी और पेगू द्वीप के करीब एक मछली पकड़ने वाली नौका से जा टकराई। सीरिया से आ रही रिपोर्टों के अनुसार दमिश्क में सरकारी लड़ाकू विमान गिर गया है। सीरिया की सरकारी मीडिया का कहना है कि तकनीक कारणों की वजह से ऐसा हुआ और इस घटना के बाद पायलट लापता है और उनकी खोज जारी है। लेकिन एक विद्रोही समूह जैश अल इस्लाम का कहना है कि उन्होंने इस लड़ाकू विमान पर हमला किया था। BBC समाचार।
BBC हिंदी सेवा की तीसरी सभा दिनभर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मोहनलाल शर्मा। जैसा कि समाचारों में आपने सुना, उत्तराखंड में एक बार फिर से बारिश ने कहर बरपाया है। यहां के पिथौरागढ़ और चमोली जिलों में भारी बारिश के चलते अब तक 12 लोगों की मौत हो चुकी है, 17 लापता हैं। लापता लोगों की तलाश के साथ साथ बचाव और राहत का काम भी जारी है। मौसम विभाग ने राज्य के विभिन्न इलाकों में अगले 72 घंटे के दौरान भारी बारिश की चेतावनी दी है। राज्य की कई प्रमुख नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। इस बीच बद्रीनाथ और केदारनाथ की सड़कें बंद हैं और वहां जा रहे तीर्थयात्रियों को सुरक्षित जगहों पर रुके रहने की हिदायत दी गई है। पूरी रिपोर्ट के साथ देहरादून से शिव जोशी।
उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों में पिछले 24 घंटों के दौरान हुई भारी बारिश से पिथौरागढ़ और चमोली जिलों में कई स्थानों पर अतिवृष्टि, बादल फटने और भूस्खलन की घटनाएं सामने आई हैं। इन जिलों के कई गांवों में जान माल का भारी नुकसान हुआ है। कई मकान मलबे में दब गए हैं, खेत और पशु भी बह गए हैं। पिथौरागढ़ में अतिवृष्टि में 20 से ज्यादा लोग लापता बताए गए हैं, लेकिन स्थानीय सूत्रों के मुताबिक मरने वालों की संख्या और भी ज्यादा हो सकती है। प्रभावित इलाकों में सेना को बुला लिया गया है। राज्य आपदा प्रबंधन विभाग के उपनिदेशक संतोष बगोली,
डीडीआर के पास 3 गांव हैं, बसड़ी और नाचनी और एक और गांव है जिसमें लोड करके एक गांव है, उसमें मलबा आ गया। कुछ कैजुअलिटीज की भी सूचना है, लेकिन कुछ सूचना नहीं हो पा रही क्योंकि वहां कनेक्टिविटी अभी अच्छी नहीं है।
सरकार ने मरने वालों के आश्रितों को 2-2 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया है। प्रेस बयान जारी कर स्थानीय लोगों और तीर्थ यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर रहने और पानी के नजदीक न जाने की हिदायत दी गई है। प्रभावित जिलों में स्थानीय प्रशासन को मुस्तैद रहने को कहा गया है। मुख्यमंत्री हरीश रावत का कहना है कि पिथौरागढ़, चमोली और चंपावत जिलों में काफी नुकसान हुआ है, लेकिन सरकार के राहत उपाय भी मौके पर हैं।
हमने सब तरीके की व्यवस्थाएं जो है वैकल्पिक व्यवस्थाएं करके रखी हुई है। रोड तत्काल खोली जा रही है और बारिश जारी है। कुछ नए एरिया के अंदर रोडें बाधित हो रही है, लेकिन ऐसी स्थिति नहीं है कि हम उसको नियंत्रण में न रख सकें।
इस बीच मौसम विभाग ने उत्तराखंड के पर्वतीय और मैदानी इलाकों में अगले 72 घंटों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम केंद्र देहरादून के निदेशक विक्रम सिंह,
हैवी रेन की जहाँ तक प्रश्न है वो भी एक दो जगहों पे आपको मिलेगी, आइसोलेटेड हैवी रेन भी स्टेट में मिलेगी। और उसमें जो डिस्ट्रिक्ट की अगर बात करते हैं, जो कौन से डिस्ट्रिक्ट हमारे खासकर है, वो है उदन के, उससे तो उसमें नैनीताल है, चंपावत है,
पिछले 24 घंटों की बारिश से बद्रीनाथ और केदारनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग भूस्खलन से बंद हो गया है। इस हाईवे पर कई जगह बार बार मलबा आने से यात्रा बाधित हो रही है। यात्रियों को सुरक्षित स्थानों में ही रुकने की हिदायत दी गई है। जो यात्री रास्ते पर थे उन्हें भी सुरक्षित ठिकानों पर भेज दिया गया है। मैदानी क्षेत्रों में संवेदनशील क्षेत्र बसावटों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने, राहत बचाव दलों को सतर्क रहने, पानी वाले स्थानों पर आवाजाही बंद रखने और स्कूलों को भी बंद रखने के निर्देश आपदा प्रबंधन विभाग ने दिए हैं। शिव जोशी, बीबीसी देहरादून।
तो जैसा कि आपने सुना, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ और चमोली जिलों में बादल फटने और बारिश का कहर, अब तक 12 लोगों की मौत। बढ़ते हैं अगली खबर पर। भारत के स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस को भारतीय वायुसेना में शामिल कर लिया गया है। 30 साल पहले इस विमान की योजना बनाई गई थी। अब तेजस भारतीय वायुसेना की 45वीं टुकड़ी में शामिल कर लिया गया। बाकी के 18 जहाज भी 2018 तक बेड़े में शामिल किए जाएंगे। इनमें 4 प्रशिक्षण विमान हैं। सुनिए बेंगलुरु से इमरान कुरैशी की रिपोर्ट।
इस लड़ाकू विमान के उड़ने की आवाज बेंगलुरु के निवासी करीब 15 साल से सुनते आ रहे हैं, लेकिन आज शायद बहुत सारे निवासियों को ये पता नहीं था कि तेजस के लिए ये कितना महत्वपूर्ण दिन है। कई सालों से ये बात सुनते आ रहे हैं कि तेजस या लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट एक सफ़ेद हाथी है। हर साल इस लड़ाकू विमान की तरक्की के बारे में कुछ न कुछ बात मीडिया और संसद में होती थी और आश्वासन दिए जाते थे। देरी के लिए सरकारी कंपनी हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड बहुत सारे कारण बताती थी। एक समय ये भी बोला गया था कि एयरफोर्स मानकों को बदलता जा रहा है। आखिरकार आज तेजस भारतीय वायुसेना में शामिल हो गया। तेजस को उड़ाने के बाद कमांडिंग ऑफिसर ग्रुप कैप्टन माधव रंगाचारी ने कहा,
आई फाउंड इट एन एक्सट्रीमली चैलेंजिंग एंड ऑनरेबल एक्सपीरियंस एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू कंटिन्यूइंग विद दिस।
हमें इसको उड़ाते हुए बहुत ही चुनौतीपूर्ण और गर्व का अनुभव हुआ और हम आशा करते हैं कि आने वाले सालों में हम इसको उड़ाते रहेंगे। ये थे ग्रुप कैप्टन माधव रंगाचारी के शब्द। तेजस की तार प्रणाली और उड़ सिस्टम और मिसाइल इस्तेमाल करने के सिस्टम की विदेश में भी बहुत तारीफ हुई है। ये बात सही है कि यह लड़ाकू विमान आने में बहुत देर हो गई, लेकिन इसके बावजूद इसकी तुलना फ्रांस की मिराज 2000, अमेरिका के F-16 और स्वीडन के ग्रिपन से की जा रही है। जाहिर है कि आने वाले सालों में इसमें और सुधार होगा। फिलहाल के लिए यह स्क्वाड्रन बेंगलुरु में ही रहेगा, लेकिन 2 साल बाद इसको तमिलनाडु के सुलूर में रखा जाएगा। बेंगलुरु से इमरान कुरैशी।
कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा के कथित जमीन घोटालों की जांच कर रहे जस्टिस धींगड़ा आयोग के कार्यकाल को बढ़ाए जाने को लेकर राजनीति गर्म है। आयोग की समय सीमा बढ़ाए जाने की मांग के बाद से ही कांग्रेस के कई नेताओं ने जस्टिस धींगड़ा पर ही आरोप लगाने शुरू कर दिए। उन्हें गुरुवार को जांच रिपोर्ट सौंपनी थी, लेकिन जांच के लिए उन्होंने 1.5 महीने का वक्त मांगा। पूरे घटनाक्रम पर किस तरह से नेताओं ने बयान दिए, सुनिए बीबीसी संवाददाता नितिन श्रीवास्तव की रिपोर्ट।
वैसे तो जस्टिस ढींगरा को अपनी रिपोर्ट हरियाणा सरकार तक गुरुवार को पहुंचा देनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने इसके लिए थोड़ी और समय सीमा की मांग की थी। उनकी मांग को राज्य सरकार ने मांग लिया है और अब उन्हें रिपोर्ट अगस्त में देनी है, लेकिन मामले ने एक राजनीतिक तूफान स्वरूप धारण कर लिया है, क्योंकि विपक्षी कांग्रेस पार्टी ने जस्टिस ढींगरा पर कुछ समाचार पत्रों में छपी खबरों का हवाला देते हुए इस आयोग की निष्पक्षता पर ही सवाल उठा दिए हैं। हालांकि जस्टिस ढींगरा ने इन सभी आरोपों का खंडन किया है।
डॉक्यूमेंट कोई सज्जन दे गए, मुझे लगा कि इन डॉक्यूमेंट्स को अध्ययन करना, पढ़ के और रिपोर्ट में अगर वो इस लायक है कि उनका रिपोर्ट के अंदर जिक्र होना चाहिए तो वो उसके लिए मैंने समय मांगा।
कांग्रेस पार्टी की नाराजगी जाहिर है क्योंकि रॉबर्ट वाड्रा सोनिया और राहुल गांधी की बेटी प्रियंका के पति हैं और खुद वाड्रा ने अपने खिलाफ सभी आरोपों का खंडन अपने फेसबुक पन्ने पर कई दफे किया है। मामला हरियाणा के गुड़गांव या अब गुरुग्राम के नाम से जाने वाले शहर में एक जमीन की कथित खरीद फरोख्त का है और इसके अलावा 3 और ऐसे कथित मामले हैं जिन पर जस्टिस ढींगरा आयोग जाँच कर रहा है। जिस रियल एस्टेट कंपनी का नाम इस कथित लेनदेन में आया है उसने भी इन सभी आरोपों का खंडन किया है। उधर भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि उस समय की कांग्रेस नेतृत्व वाली हरियाणा सरकार ने कथित तौर पर रॉबर्ट वाड्रा की व्यावसायिक गतिविधियों में उन्हें बड़ी छूटें दिलवाईं, जो कि गलत था। अब जांच आयोग के कार्यकाल बढ़ने पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा,
अब ये तो वो जानेंगे, उन्होंने समय मांगा, हमने हमारा देना दायित्व तो बनता है, हमने उनको समय दिया। आज जब उसका रिजल्ट आने वाला था उस समय ये सारी बातें उनको याद आई हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई दाल में काला है।
लेकिन कांग्रेस पार्टी लगता है ऐसे ही किसी मौके का इंतजार कर रही थी। पार्टी का कहना है कि जस्टिस ढींगरा के नेतृत्व वाले कमीशन पर उन्हें पूरा भरोसा नहीं है और ये जांच राजनीति से प्रेरित है। सुनिए कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला को।
सर्टेन न्यूज़पेपर्स हैव टुडे given an another expose to a Justice S.N. Dhingra's commission itself.
जस्टिस एस एन ढींगरा कमीशन को लेकर कुछ अखबारों ने आज नए तथ्य सामने रखे हैं। जस्टिस ढींगरा ने हरियाणा सरकार से तरफदारी चाही कि उन्हें इस मामले में कोई फैसला या रिपोर्ट देने के लिए अयोग्य मान लिया जाए।
बहरहाल अब जांच आयोग की रिपोर्ट आने में कई हफ्ते शेष हैं और जस्टिस ढींगरा के मुताबिक उनके पास ऐसे कई दस्तावेज भी पहुंचे हैं जिनके तथ्यात्मक जांच करने में इतना समय तो लगेगा ही। नितिन श्रीवास्तव, बीबीसी दिल्ली।
बीबीसी इंडिया बोल।
तनख्वाह बढ़ने के बावजूद केंद्र सरकार के कर्मचारी नाराज क्यों? 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के खिलाफ 11 जुलाई को देश भर में लाखों कर्मचारियों की हड़ताल। क्या वाकई सरकारी कर्मचारियों के जले पर नमक छिड़का गया है या उनकी नाराजगी बेबुनियाद है? इस बार इसी विषय पर इंडिया बोल में चर्चा होगी। कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए शनिवार 2 जुलाई शाम 7:30 बजे मुफ्त फोन करें 1800 11 7000 या 1800 102 7001 पर।
बीबीसी इंडिया बोल।
चलो रियो की छठी कड़ी में सुनिए क्यों मिल्खा सिंह के हाथ से फिसला था पदक रोम ओलंपिक में और किस तरह इथोपिया के अबीबी बिकला ने नंगे पैर दौड़ते हुए मैराथन दौड़ में ओलंपिक रिकॉर्ड बनाया था। पेश कर रहे हैं रेहान फजल।
चलो रियो।
चलो रियो में अभिवादन स्वीकार करिए रेहान फजल का। यूं तो मिल्खा सिंह ने एशियाई खेलों में 4 स्वर्ण पदक और राष्ट्रमंडल खेलों में 1 स्वर्ण पदक जीता है, लेकिन जब भी उनका जिक्र आता है उनकी जीतों से कहीं ज्यादा उनकी एक हार की चर्चा होती है। यूं तो ओलंपिक खेलों की व्यक्तिगत स्पर्धाओं में अब तक भारत को कई पदक मिल चुके हैं। केडी जाधव, लिएंडर पेस, राजवर्धन सिंह राठौर और सुशील कुमार जैसे कई लोग भारत को पदक दिलवा चुके हैं, लेकिन रोम ओलंपिक में मिल्खा सिंह के पदक चूकने की कहानी को इन सब से कहीं ज्यादा शिद्दत से याद किया जाता है। शायद इसकी वजह यह है कि दिल टूटने की कहानियां जीत की कहानियों से कहीं ज्यादा ताकतवर होती है। रोम जाने से 2 साल पहले ही मिल्खा सिंह को विश्व स्तर का एथलीट माना जाने लगा था, जब उन्होंने कार्डिफ राष्ट्रमंडल खेलों में तत्कालीन विश्व रिकॉर्ड होल्डर मेल स्पेंस को हराकर स्वर्ण पदक जीता था। रोम में भारतीय एथलेटिक्स टीम के अमरीकी उप कोच विंस रील का पूरा विश्वास था कि मिल्खा इस बार पदक जरूर लाएंगे, शायद स्वर्ण पदक भी ले आए। उनकी इस उम्मीद के पीछे कुछ निश्चित कारण भी थे। बीबीसी से बात करते हुए मिल्खा सिंह ने याद किया,
हम ओलंपिक में जाने से पहले मैंने कम से कम दुनिया के अंदर 80 इंटरनेशनल रेसेस दौड़ी थी और उससे एक मेरा रिकॉर्ड बन गया था जिसमें मैंने 77 जीती और सारी दुनिया को ये मालूम था कि अगर रोम ओलंपिक के अंदर 400 मीटर कोई जीतेगा तो मिल्खा सिंह इंडिया का ही जीतेगा।
रोम में मिल्खा सिंह पांचवी हीट में दूसरे स्थान पर आए, क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल में भी उनका स्थान दूसरा रहा। मिल्खा को स्थानीय दर्शकों से बहुत समर्थन मिल रहा था।
जब भी स्टेडियम में मैं दाखिल होता था तो स्टेडियम सारा बेस्ट विशेष से गूंज उठता था, कहते थे लोग के भी ये साधु, क्योंकि उन्होंने पहले कभी सरदार देखा नहीं था तो वो ये सोचते थे कि इसने जो बाल रखे हुए हैं सिर पे, जो जूड़ा है, ये एक सेंट है, साधु है, तो उनकी बेस्ट विशेष मेरे साथ होती थी।
आमतौर से सेमीफाइनल दौड़ के अगले दिन ही फाइनल दौड़ होती थी, लेकिन 1960 के रोम ओलंपिक खेलों में 400 मीटर की फाइनल दौड़ दो दिन बाद हुई। इससे मिल्खा सिंह को उस दौड़ के बारे में सोचने का और मौका मिल गया और वो दबाव में आ गए। वो इतने नर्वस थे कि अपने कमरे में ही तेज तेज कदमों से चलने लगे। बाद में उन्होंने अपनी आत्मकथा द रेस ऑफ माई लाइफ में लिखा।
अचानक मेरे दरवाजे को किसी ने खटखटाया। बाहर हमारे मैनेजर उमराव सिंह थे। वो मुझे एक लंबी वॉक पर ले गए। हम कई पत्थर वाली गलियों, इमारतों, फव्वारों और तोरण द्वारों के सामने से गुजरे। वो मुझसे पंजाब की बातें कर रहे थे और सिख गुरुओं की बहादुरी की कहानियां सुना रहे थे ताकि अगले दिन होने वाले मुकाबले से मेरा ध्यान बटे।
अगले दिन कार्ल कॉफमैन को पहली लेन मिली, अमेरिका के ओटिस डेविस दूसरी लेन में थे। मिल्खा सिंह का दुर्भाग्य था कि उन्हें पांचवी लेन मिली। उनकी बगल में एक जर्मन एथलीट था जो छह धावकों में सबसे कमजोर था।
जर्मन एथलीट था, वो इतना अच्छा नहीं था, मैं उसको कितनी बार बीट कर चुका था पहले, और वो जो जर्मन एथलीट की वजह से ही मेरी रेस जो थी ना, वो मैंने गलत जजमेंट की उस रेस के अंदर। तो जो लड़के मेरे साथ दौड़ रहे थे उनको ऑलमोस्ट मैंने सबको बीट किया हुआ था पहले।
जैसे ही स्टार्टर चिल्लाया ऑन योर मार्क, उन्होंने घुटनों के बल बैठकर प्रार्थना की। उन्होंने सिर नीचा किया और एक लंबी सांस ली, और जैसे ही पिस्टल की आवाज गूंजी मिल्खा ने शुरुआती बढ़त बना ली।
थोड़ी सी मेरे से गलती हुई और उस गलती से मैं समझता हूँ कि जो मेडल मुझे मिलना चाहिए था गोल्ड मेडल, वो मेरे हाथ से गिर गया। वो गलती इस तरह से हुई कि मैं 250 मीटर तक रेस को लीड कर रहा था, तो 250 मीटर जब मैं पहुंचा तो वहां पे मेरे दिल के अंदर ये ख्याल आया कि मिल्खा सिंह जी आप इतना तेज दौड़ रहे हैं, हो सकता है कि आप ये रेस खत्म ना कर पाएं। तो जिस स्पीड के अंदर मैं जा रहा था उस स्पीड को मैंने ड्रॉप किया और जो लड़के मेरे पीछे मुझे फॉलो कर रहे थे वो जब मैंने कर्व खत्म की, जब 100 मीटर लास्ट वाला 100 मीटर था उस पे जब मैं आया तो मैंने देखा भी 3-4 लड़के मेरे से आगे निकल गए। तो मैंने पकड़ने की कोशिश की, मगर आप समझ सकते हैं कि जो बराबर के खिलाड़ी होते हैं अगर वो 3-4 मीटर आगे निकल जाएं तो उनको पकड़ना जो है बहुत मुश्किल होता है। तो वो गलती जो मेरे से 250 मीटर पे हुई वो मैं समझता हूँ कि मेरी किस्मत का सितारा और हिंदुस्तान का जो मेडल था वो उसी टाइम मेरे हाथ से गिर गया।
The German Kinder, India's Milka Singh and South Africa's Spence are off like bullets. Kinder falls back. Milka Singh and Spence keep it up till almost out of the curve, when Otis Davis in the center and Kaufman inside overtake them. Davis runs leaning backwards so that his legs seem to be running away from him. With 50 meters to go, Kaufman makes his effort, but Davis holds him off. His body catches up with his legs, leaps them over the finishing line. Kaufman throws himself on the ground. Then Davis learns that his time, 44.9 seconds, has set up a new world record. Kaufman is awarded the same time.
First second ki photo finish hui, third, fourth ki photo finish hui, fifth, sixth ki photo finish hui. To maine aapko bataya ki ye jo race jo hai, ye history mein jaye. Bahut badi race thi ye aur itni mashhoor ye race hai. आप किसी से भी बात करो दुनिया के अंदर सब लोग जानते हैं कि किस किस तरह से ये लोग दौड़े वहां।
कुछ हलकों में ये कहा गया कि मिल्खा ने एक स्प्लिट सेकंड में पीछे आ रहे अपने प्रतिद्वंदियों को देखने की कोशिश की जिससे उनका मोमेंटम टूटा।
ये मेरी आदत मुझे पड़ चुकी थी, चाहे मैं एशियन गेम्स में दौड़ता था या कॉमनवेल्थ गेम्स में दौड़ता था या किसी भी रेस में होता था, तो मैं थोड़ा सा पीछे मुड़ के देखता था कि भाई कोई आदमी जो है कितना मेरे से पीछे जो है वो चल रहा है। तो ये सही बात है कि मैंने पीछे मुड़ के देखा था, उससे भी काफी फर्क पड़ा।
दिलचस्प बात यह थी कि स्वर्ण पदक जीतने वाले डेविस امریکہ کی طرف سے اس دوڑ میں بھاگنے کے لیے پہلے چنے ہی نہیں گئے تھے۔
ڈیوس جو تھے وہ میرے ساتھ کبھی دوڑا نہیں تھا، اور وہ بلکہ چوتھے نمبر پہ تھا یو ایس اے ٹیم کے اندر، ریلے ٹیم کے لیے آیا تھا۔ تین آدمی دوڑتے ہیں تو اس کے اندر ایک لڑکے کی ٹانگ خراب ہو گئی، اور اس وجہ سے اس کو چانس مل گیا وہاں 400 میٹر دوڑنے کے لیے۔ ادروائز وہ 4x400 جو ریلے ہوتی ہے اس کے لیے وہ آیا تھا۔ تو جب اس کو چانس ملا تو وہ اٹ واز از گڈ لک کہ وہ آ کے وہ ریس جیت گیا وہاں پہ۔ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ وہ ریس جیت جائے گا۔
ملکھا سنگھ کی ابھی بھی سب سے بڑی دلی اچھا ہے کہ کوئی بھارتی ایتھلیٹ اولمپک کھیلوں میں پدک پراپت کرے۔
ہمیشہ میرے دل کے اندر یہی خواہش رہتی ہے کہ یہ دنیا چھوڑنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ کوئی نہ کوئی ایسا لڑکا یا لڑکی انڈیا میں سے اٹھنا چاہیے جو میڈل میرے ہاتھ سے گر گیا وہ اولمپک کھیلوں میں لے، اور ہمارا ترنگا جھنڈا اور ہمارا نیشنل انتھم جو ہے وہ اولمپک کھیلوں میں بجائے۔
دیکھنا یہ ہے کہ ملکھا سنگھ کی یہ اچھا پوری ہوتی ہے یا نہیں۔ روم اولمپک میں ایک بالکل انجان ایتھلیٹ نے سب سے زیادہ تہلکہ مچایا تھا۔ ایتھیوپیا کے سمراٹ ہائلے سلاسی کی سینا کے سپاہی ابھی بھی بکلا بچپن میں ایتھیوپیا کی پہاڑیوں میں مویشیوں کو چرایا کرتے تھے۔ امریکن یونیورسٹی آف روم میں پروفیسر سائمن مارٹن نے بی بی سی کو بتایا تھا۔
He's completely unknown. He was a member of Haile Selassie's Imperial Guards. He comes from the high plains in Ethiopia, so he's trained at altitude. But at the time, effectively, people know very, very little about him.
وہ بالکل انجان تھے۔ وہ ہائلے سلاسی کے امپیریل گارڈز کے سدسیہ تھے، لیکن ان کا میراتھن میں سروشریشٹھ سمے اس سمے کے وشو ریکارڈ سے بہتر تھا، لیکن ایتھیوپیا کے باہر کسی کو اس کے بارے میں وشواس نہیں تھا۔ ان کی اس اپلبدھی کو اس سمے بہت توجہ نہیں دی گئی تھی۔
بکلا کا جن ایتھیوپیا کے گاؤں جاٹو میں 7 اگست 1932 کو ہوا تھا۔ ورلڈ اسپورٹس میگزین کے کولن گپسن نے بکلا کا انٹرویو لینے کے بعد لکھا تھا،
بچپن میں وہ چارے کی تلاش میں روز کئی میل چلا اور دوڑا کرتے تھے۔ 13 سال کی عمر میں وہ اسکول گئے جہاں وہ ایک خاص ایتھوپیائی کھیل گانا کھیلا کرتے تھے۔ یہ ایک طرح سے ہاکی کا لانگ ڈسٹینس سنسکرن ہے، جہاں گول پوسٹ دو الگ الگ گاؤں میں ہوتے ہیں اور ان دونوں کے بیچ میں کم سے کم 2 میل کا انتر ہوتا ہے۔
ایتھیوپیائی سینا کے سویڈش ٹرینر اونی نسکینن بکلا کو ہر روز سلولتا سے آدیس ابابا کے بیچ دوڑتے ہوئے دیکھتے تھے، تبھی انہیں بکلا کو میراتھن میں دوڑانے کا خیال آیا۔ فرانس کے مشہور کھیل پترکار رابرٹ پارین، جنہوں نے میراتھن دوڑ پر بہت لکھا ہے، کہتے ہیں،
میراتھن میں پہلے 30 کلومیٹر میں سٹیمینا کی ضرورت پڑتی ہے جب آپ لمبے سمے تک تیز گتی بنائے رکھتے ہیں۔ اس دوڑ کی ترکیب یہ ہے کہ آپ 30 کلومیٹر کا لکش بنا تھکے پار کریں۔ آخری 12 کلومیٹر آپ کی سہنشیلتا کا امتحان ہے، جہاں آپ میں ہر حالت میں آگے بڑھنے کی شمتا ہونا ضروری ہے۔
10 ستمبر 1960 کو شام 5:30 بجے میراتھن دوڑ شروع ہوئی۔ بکلا اور وکسیرا نے نارنگی رنگ کی شارٹس اور ہرے رنگ کی ویسٹ پہن رکھی تھی۔ آسٹرین پترکار اور فوٹوگرافر ہیرلڈ لیچن پرگ نے لکھا،
18 کلومیٹر آتے آتے رادی سب سے آگے تھے، بکلا ان کے ٹھیک پیچھے دوڑ رہے تھے۔ 30ویں کلومیٹر پر بکلا تھوڑے آگے نکلنا شروع ہو گئے تھے۔ وہ اتنی سہجتا سے دوڑ رہے تھے کہ ایسا لگ رہا تھا کہ ان کا پیر زمین کو چھو تک نہیں رہا تھا۔ نسکینن نے بکلا کو نردیش دے رکھے تھے کہ جیسے ہی انہیں اوبیلسک کا سمارک دکھائی دے وہ اپنی رفتار بڑھا دیں۔ یہ جگہ فنیشنگ لائن سے 2 کلومیٹر پیچھے تھی۔ 41ویں کلومیٹر آتے آتے بکلا رادی سے 5 میٹر آگے نکل چکے تھے۔ اس کے بعد رادی پچھڑتے ہی چلے گئے۔
His name is on every lip. A magnificent effort. 2 hours, 15 minutes, 16.2 seconds. The emperor will surely promote him for this. Rady finishes 35 seconds later. Abebe Bikila is being mobbed by admirers when the New Zealander McGee arrives. The two Russians, Vorobyev and Popov, cross the line. They have beaten Zaptopek's time after all. The others come in at intervals, but there are only 3 medals. For a trial of such endurance and courage, each runner deserves one.
جو کچھ ہوا تھا وہ استبد کر دینے والا تھا۔ عام طور سے ایتھلیٹ پرتیوگتائیں جیتتے ہوئے ٹاپ پر پہنچتے ہیں، اور جب تک وہ ٹاپ پر پہنچتے ہیں دنیا ان کے بارے میں جان چکی ہوتی ہے، لیکن بکلا کے بارے میں دنیا نے پہلے کبھی سنا ہی نہیں تھا۔
और दूसरी बड़ी चीज थी कि उनकी जीत से पहली बार विश्व के खेल पटल पर अफ्रीका का उदय हुआ था। चैंपियंस ट्रॉफी और असलान शाह हॉकी में शानदार प्रदर्शन के बाद अब भारतीय हॉकी टीम से रियो में कुछ बेहतर करने की उम्मीद की जाने लगी है। क्या 36 साल बाद रियो में इतिहास अपने आप को दोहराएगा या फिर हॉकी टीम एक बार फिर उम्मीदों पर खरी नहीं उतरेगी? मलय नीरव की रिपोर्ट।
अब जब रियो की तैयारी है तब भारतीय हॉकी टीम ने अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद करने वालों को भरोसा जताया है। अपने लगातार सुधरते अच्छे प्रदर्शन से 3 महीने पहले अजलान शाह कप में रजत पदक और कुछ ही दिनों पहले पहली बार चैंपियंस ट्रॉफी में भी रजत पदक जीतकर फाइनल में 70 मिनट तक ऑस्ट्रेलिया को गोल नहीं करने दिया, मगर विवादित पेनाल्टी शूट आउट में ऑस्ट्रेलिया के हाथों 3-1 से हार गई भारतीय टीम। बहरहाल इस हार के बावजूद उम्मीदें जगी, रियो ओलंपिक्स में भारतीय हॉकी के इतिहास में एक नया अध्याय और जोड़े जाने की। तो क्या क्या निखार आया भारतीय हॉकी टीम में? खिलाड़ियों की फिटनेस बेहतरीन, आत्मविश्वास गजब का, मानसिक रूप से मजबूत इतने कि हिलाए नहीं हिलते, प्रभावशाली ढंग से लगातार सब्स्टिट्यूशन, तेज तर्रार टीम, लगातार हावी रहने की क्षमता का ऐतिहासिक प्रदर्शन, तभी तो कप्तान सरदार सिंह कहते हैं।
पिछले एशियन गेम जीतने के बाद जो अभी तक हमारा जो प्रोसेस चल रहा है, ओलंपिक की प्रिपरेशन चल रही है, मैं कहूंगा कि रिजल्ट काफी अच्छे रहे हैं और ट्रेनिंग सेशन काफी अच्छे चल रहे हैं और जिस लेवल की रिक्वायरमेंट है इंटरनेशनल हॉकी में उस तरीके से अपनी अपनी फिटनेस कर रहे हैं। तो मैं कहूंगा कि ओलंपिक से पहले हमने काफी कुछ सीखा और हम देख सकते हैं कि ओलंपिक से पहले कौन से ग्राउंड के ऐसे एरियाज हैं जहां हमें इंडिविजुअली और एज ए टीम इम्प्रूव करने की जरूरत है।
भारतीय टीम के लगातार बेहतर होते प्रदर्शन की पराकाष्ठा लंदन में चैंपियंस ट्रॉफी में देखने को मिली, जिसे देखकर 1975 में विश्व कप जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम के अहम सदस्य असलम शेर खान ने कहा,
ये चैंपियंस ट्रॉफी ये जो उनकी परफॉर्मेंस इंडिया की रही, जिस लेवल पे उन्होंने प्रदर्शन किया है, टेक्निक में या खेल में अपनी मजबूती आ गई है कि वो किसी भी टीम से टक्कर ले सकते हैं, हरा सकते हैं।
उधर पूर्व ओलंपियन और भारतीय हॉकी कोच एमके कौशिक का मानना है कि भारतीय टीम एक इकाई की तरह खेल नजर आ रही है और बॉल पोजीशन में प्रतिद्वंद्वी टीम को आगे बढ़ने नहीं दे रही है, जो कि एक बहुत अच्छा आसार है टीम की जीत का।
हमारी पूरी टीम एक वन यूनिट होकर खेली, ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट था और टीम ने पहले मैच से आखिरी मैच तक अच्छा प्रदर्शन किया, ये एक रिकॉर्ड है और इस समय हुआ है जब हम ओलंपिक खेलने जा रहे हैं, तो एक बहुत मॉरल बूस्टर होगा और अब हमें ट्रेनिंग करने में भी एक मोटिवेशन मिलेगा।
कमियां तो हैं मगर सुधार जारी है। महाराज किशन कौशिक कहते हैं,
जो थोड़ा सा गड़बड़ वाला मामला है वो पेंटिकॉनर जो हमने 10 दिए हैं फाइनल में और 5 लिए हैं, लेकिन 10 को डिफेंड प्रॉपरली किया, ये बहुत अच्छा बात हुआ है और उम्मीद है कि यहाँ से हम आगे ही जाएंगे और जो गलतियां हमने इस टूर्नामेंट में की हैं उसको हम रेक्टिफाई कर सकेंगे ताकि हम ओलंपिक जो कोई बहुत बड़ा चैलेंज है तो उसमें हम भी बेटर प्रदर्शन के लिए तैयार होंगे।
तो फिर क्यों न करें उम्मीद इस भारतीय हॉकी टीम से ओलंपिक पदक की।
चलो रियो में आज इतना ही, रेहान फतल को दें इजाजत, नमस्कार।
चलो रियो की 6वीं कड़ी कल आप विश्व भारती कार्यक्रम में दोबारा सुन सकते हैं और कार्यक्रम में से पहले कि आपसे विदा लें मुख्य समाचार एक बार फिर से सुन लेते हैं।
बीबीसी समाचार। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ और चमोली जिलों में भारी बारिश के बाद बादल फटने और भूस्खलन में 12 लोगों की मौत हो गई है और 17 लोग लापता बताए गए हैं। बांग्लादेश में एक हिंदू पुजारी की गला रेतकर हत्या कर दी गई है। एक अधिकारी के अनुसार श्यामानंद दास सुबह की पूजा की तैयारी कर रहे थे, तभी 3 लोग मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए और उन पर हमला किया। फ्रांस में सोम की लड़ाई की शुरुआत की 100वीं बरसी पर हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा हुए और इस लड़ाई में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। ताइवान की सेना ने गलती से एक मिसाइल छोड़ दी है जिससे एक व्यक्ति की मौत हो गई है और 3 लोग जख्मी हो गए हैं। सीरिया से आ रही रिपोर्टों के अनुसार दनविश में सरकारी लड़ाकू विमान गिर गया है। बीबीसी समाचार।
तो बीबीसी हिंदी सेवा की 3री सभा दिन भर के इस अंक में बस इतना ही। आज स्टूडियो संभाल रहे थे अजीत सारथी। 1.5 घंटे बाद घटना चक्र कार्यक्रम लेकर हम फिर से उपस्थित होंगे। मोहनलाल शर्मा को विदा दें, नमस्कार।